दीवा से मिलने के बाद कियाना बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और हर हाल में उसे दीवा से बदला लेना था। एक बात तो वो समझ गई थी कि दीवा को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। अगर आसान होता तो अब तक वो पहली ही मुलाकात में दीवा को सबक सिखा चुकी होती। उल्टा दीवा ने उसके घमंड को अच्छा खासा जवाब दिया था। शाम के वक्त जब कियाना घर पर आई तो दीवा से हुई मुलाकात के बाद अच्छी खासी गुस्से में थी। ऊपर से उसके डैड राजवीर जैन भी उसे किसी और लड़के को डेट करने का कह रहे थे। कियाना को समझाने के लिए राजवीर ने फिर से कहा, एक रिश्ते के अंदर प्यार होना ज़रूरी है। अगर तुम ज़बरदस्ती करोगी तो वो कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाएगा और उम्र भर ये रिश्ता एक कैद बनकर रह जाएगा। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने कियाना की गलतियों पर उसे कभी डांटा क्यों नहीं। तो मुझे कैद भी मंजूर है, लेकिन मुझे आर्यांश चाहिए। आप उस लड़की से अभी तक मिले तक नहीं है डैड। उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि आर्यांश जैसा लड़का उसके पीछे पागल हो जाए। फिर वो लड़की आर्यांश के साथ कैसे हो सकती है, कियाना ने बिफरते हुए जवाब दिया। उसके लिए ये हजम कर पाना मुश्किल था कि दीवा जैसी सिंपल लड़की को आर्यांश कैसे डेट कर सकता है। कियारा राजवीर से बातें कर रही थी, तभी उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। उसने गुस्से भरी निगाहों से लिविंग रूम के गेट की तरफ देखा तो वहां हर्षाली ट्रे के साथ खड़ी हुई थी। वो उनके लिए कॉफी लेकर आई थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, हर्षाली ने अंदर आते हुए कहा। कियाना ने उसकी तरफ घूर कर देखा। वो छुप कर उनकी बातें सुन रही थी। इतनी वजह काफी थी कियाना को हर्षाली पर गुस्सा करने के लिए। उसे हर्षाली कभी पसंद नहीं थी। उसका बस चलता तो वो अब तक उसे घर से निकाल चुकी होती। अगर उसके मामले में कियाना शांत थी तो उसका एक ही कारण था कि हर्षाली अब माँ नहीं बन सकती थी। दुनिया के सामने वो एक अच्छी बेटी होने का पूरा दिखावा करती थी। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं आज मुसीबत में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे लोगों की मदद लेने की ज़रूरत पड़े, कियाना चिढ़ते हुए बोली। कियाना गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अगर तुम्हें आर्यांश का दिल जीतना है तो अपने गुस्से को काबू करना सीखना होगा। उसकी ज़िंदगी में और भी लड़कियाँ आएंगी, लेकिन तुम तो एक दीवा गोयनका से ही इतना घबरा गई। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा, हर्षाली ने अपनी बातों को प्यार से रखा। राजवीर ने गहरी सांस ली और फिर हर्षाली की तरफ देखा। हर्षाली ने आंखों ही आंखों में सब संभालने का इशारा किया तो राजवीर वहां से चले गए थे। उनके जाते ही हर्षाली कियाना के पास जाकर बैठ गई और उसे कॉफी का मग पकड़ा दिया था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, कियाना ने थोड़ा नरमी से पूछा। उसे लगा कि हर्षाली उसकी कुछ मदद कर पाएगी, आखिर वो काफी अनुभवी थी। उसके जिंदगी में आने के बाद उसके पिता ने उसकी माँ को रास्ते से हटाने का सोच लिया था, कुछ तो बात थी उसमें। हर्षाली ने कियाना के थोड़ा करीब खिसक कर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहलाकर कहा, कियाना हम सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, मेरे खुद के कोई बच्चा नहीं और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही देखा है, लेकिन हाँ तुमने कभी मुझे अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया। यकीन करो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। हाँ जानती हूँ मेरी गलती है, पर मैं आपके कहे मुताबिक चलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, अगर आर्यांश मेरे पास वापस आ जाएगा तो मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, कियाना ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा। हर्षाली भी ऐसे जता रही थी जैसे वो उसकी सगी माँ हो। उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि हम एक परिवार की तरह रहें। हाँ हम एक परिवार ही हैं, बस आप मुझे ये बताइए ना कि आर्यांश मेरे पास कैसे आएगा, कियाना ने बेचैनी से कहा। वो कुछ भी करके आर्यांश को अपने करीब लाने का रास्ता जानना चाहती थी, फिर चाहे उसके लिए उसे हर्षाली को मन से स्वीकार क्यों ना करना पड़े। हर्षाली ने कुछ पल सोचा और फिर गंभीर चेहरे के साथ पूछा, आज तुम उस लड़की से मिली थी, उसने साफ मना कर दिया होगा कि वो आर्यांश को नहीं छोड़ने वाली। हाँ माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो लड़की ना जाने खुद को क्या समझती है, बहुत घमंडी है, कियाना ने जवाब दिया। हम उसे डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि फिलहाल आर्यांश उसके साथ है, हमें उसके किसी अपने को टारगेट करना होगा, उसे ब्लैकमेल करना होगा, हर्षाली ने शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा। आखिर वो उन सब चीज़ों में काफ़ी माहिर जो थी, तो हमें क्या करना होगा क्लियरली बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कियाना ने झट से पूछा। वो हर्षाली की प्लानिंग से एक ही बार में इम्प्रेस हो गई थी। मेरे भाई का दोस्त है, वो अंडरवर्ल्ड में है, वो काफ़ी भरोसेमंद भी है और ख़तरनाक भी, कल उससे मिलते हैं और बाद में आगे की प्लानिंग बनाएंगे, हर्षाली ने मुस्कुराकर कहा। उसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं कियाना को समझ में आ गई थी। वो मुस्कुराकर जल्दी से हर्षाली के गले लग गई। उसने खुश होकर कहा, यू आर अमेजिंग माँ, अब देखिएगा मैं उस लड़की को छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसका ये एटीट्यूड और ईगो तोड़कर रख दूंगी, फिर देखती हूँ कि वो मेरे आर्यांश के पास कैसे रहती है। वहीं दूसरी तरफ इनाया अपने हॉस्टल रूम से किसी काम के चलते बाहर आई थी। उसके कानों में ईयरफोन्स लगे हुए थे और वो अमायरा को कॉल पर बात कर रही थी। तुम्हें पता है कल रात मैंने एक हॉलीवुड सीरीज देखी थी, वो इतनी कमाल की थी कि उसे पूरी खत्म किए बिना सो ही नहीं पाई थी। ब्लैंकेट के अंदर छुपकर मोबाइल यूज करना काफी रिस्की होता है,
सकता है, लेकिन सीरीज इतनी कमाल की हो तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना बनता है, इनाया ने हल्का हंसते हुए कहा। क्या वो इतनी अच्छी थी? तो मुझे उसका नाम बताओ, मैं भी जरूर देखूंगी, अमायरा ने सामने से जवाब दिया। हाँ, बहुत ही अच्छी सीरीज थी, बस खुद को तैयार रखना कि तुम एक साथ सारे एपिसोड देख सको, इनाया बोली। अचानक उसे अपने पीछे एक गाड़ी के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी तो इनाया रुक गई थी। स्कूल का हॉस्टल एरिया होने की वजह से उस हिस्से में लोग ज्यादा तेज गाड़ी चलाते नहीं थे। इनाया ने जल्दी से पलट कर पीछे देखा। इनाया ने देखा कि वो एक काली गाड़ी थी और उसमें से तीन लोग बाहर निकल कर आए थे। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उनकी बॉडी और बाकी फिजिक देखकर वो किसी गुंडे की तरह लग रहे थे। उन्हें देखकर इनाया ने अपना थूक निकला और इसे एक इत्तेफाक समझा। वो जल्दी से दूसरी तरफ पलट गई। उसने हांफते हुए कहा, और अभी मैंने तीन गुंडों को देखा। क्या बात कर रही हो इनाया, अभी तो तुम सीरीज की बात कर रही थी, क्या वो एक एक्शन सीरीज थी जिसके अंदर गुंडे दिखाए हुए थे? अमायरा ने कंफ्यूजन से पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, इनाया बोली और अपने आसपास देखने लगी। वेकेशन होने की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने घर गए हुए थे। ऊपर से दोपहर का वक्त होने की वजह से कोई इस धूप में बाहर भी नहीं निकलता था। वे गुंडे उससे दूर थे इसलिए उसकी बात नहीं सुन सकते थे। इनाया ने कॉल पर अमायरा को सतर्क करने का सोचा, लेकिन तभी अचानक वे तीनों दौड़कर उसकी तरफ आने लगे। इनाया को भी कुछ समझ नहीं आया, वो भागने लगी, लेकिन वो इतनी भी तेज नहीं थी कि उन तीन हट्टे कट्टी आदमियों से भाग सके। जल्द ही उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। इनाया उनसे छूटने के लिए हाथ पैर मार रही थी। उसने कांपते आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? देखो तुम लोगों ने गलत लड़की के पास आए हो। इनाया अपनी तरफ से अमायरा को हिंट देने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उनके एक आदमी का ध्यान इनाया के कान में लगे एयरपोर्ट की तरफ गया। वो अपने बॉस की तरफ देखकर बोला, बॉस ये लड़की तो फोन पर बात कर रही है, कहीं इसने हमारे बारे में किसी को बता तो नहीं दिया? उस गैंग का बॉस गुस्से में इनाया को घूरने लगा। फिर उसने इनाया के नाक के आगे कुछ स्प्रे किया। अगले ही पल इनाया उसके कंधे पर गिरी हुई थी, जबकि उसके आदमी ने इनाया का मोबाइल ढूंढकर कॉल काट दिया था।
इनाया ने अब तक सिर्फ मूवी और सीरीज में ही इस तरह की सिचुएशन देखी थी। उसे नहीं पता था कि कभी जिंदगी में उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसका किडनैप हो गया था और वो खुद की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो वहीं दूसरी तरफ कॉल पर मौजूद अमायरा को अब सब समझ आ गया था। डर से उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उतरी और बैग उठाकर सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई थी। अमायरा और इनारा अच्छी दोस्त थीं। ऊपर से अमायरा दीवा को जानती भी थी। इनाया ने ही उसे बताया था कि दीवा लाइफ केयर हॉस्पिटल में काम करती है। कुछ ही देर में अमायरा लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी अचानक उसे सामने से डॉक्टर माया दिखाई दी। अमायरा जल्दी से दौड़कर उसके पास गई और बोली, मैम क्या मैं डॉक्टर दीवा गोयंका से मिल सकती हूँ? मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। डॉक्टर माया वैसे भी दीवा को पसंद नहीं करती थी। ऊपर से माया की जगह दीवा को प्रमोशन मिल गया था तो वो उससे और भी जलती थी। उसने इस मामले को सीरियस नहीं लिया और सिर हिलाकर कहा, तुम कौन हो? ये हॉस्पिटल टाइम है, रिश्तेदारों से मिलना है तो घर पर मिला करो, वैसे भी डॉक्टर गोयंका इस वक्त सर्जरी में बिजी हैं। माया वहां से जाने को हुई, लेकिन तभी अमायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो प्लीडिंग टोन में बोली, वो वापस कब तक आएंगी? मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। माया ने जल्दी से उसका हाथ छटक दिया था। वो चिढ़ते हुए बोली, मैं कोई उनकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ जो मुझे पता चलेगा वो बाहर कब आएंगी। वैसे भी वो आजकल एक के बाद एक सर्जरी करती रहती हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें तुम जैसे बच्चे से मिलने का टाइम मिलेगा। एक तो इनाया का किडनैप हो गया था, ऊपर से माया भी काफ़ी रूडली बात कर रही थी। ये देखकर अमायरा की आंखों में आंसू आ गए। वो लगभग हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ डॉक्टर समझने की कोशिश कीजिए, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या आप एक बार ऑपरेशन रूम में जाकर पूछ सकती हैं कि उन्हें कितना टाइम लगेगा? हाँ, जैसे मैं तुम्हारे और तुम्हारी डॉक्टर दीवा गोयंका के लिए फ्री ही बैठी हूँ, माया ने जवाब दिया और बिना आगे का सुने वहां से जाने लगी। उसे तो पहले ही दीवा से नफरत थी, अब तो वो उसे और भी कांटे की तरह चुभने लगी थी। अमायरा पीछे से रोती रह गई, लेकिन माया ने उसकी एक नहीं सुनी। इस बीच सिस्टर नव्या ने उन दोनों को बात करते हुए देखा था। उसे लगा कि ये लड़की डॉक्टर माया की रिश्तेदार है, ये सोचकर उसने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अमायरा ने हार नहीं मानी थी। माया के जाने के बाद उसे सिस्टर नव्या दिखाई दी तो वो जल्दी से दौड़कर उसके पास गई। सिस्टर, क्या आप मेरी डॉक्टर दीवा गोयंका को ढूंढने में हेल्प कर सकती हैं? अमायरा ने रूंधे गले से कहा। उसे लगा कि डॉक्टर होने की वजह से माया इतनी रूड है, शायद नर्स उससे सही से बात कर ले। जैसे ही नव्या ने दीवा का नाम सुना तो वो तुरंत रुक गई थी। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम डॉक्टर दीवा के बारे में क्यों पूछ रही हो? मैं डॉक्टर गोयंका की बहन की फ्रेंड हूँ, तो जब हम फ़ोन पर बात कर रहे थे तो उसे किसी ने किडनैप कर लिया। मेरा यकीन कीजिए, डॉक्टर दीवा को ये बताना बहुत ज़रूरी है, उसकी जान खतरे में है। इस बार इनाया ने एक सांस में सब कुछ बता दिया था ताकि सिस्टर सिचुएशन को समझें और जल्दी से दीवा को बुलाकर लेकर आएं। जैसे जैसे समय बीत रहा था इनाया की जान खतरे में आती जा रही थी। सिर्फ अमायरा ही थी जो दीवा से मिलकर इनाया की मदद करने जा सकती थी, पर अफसोस कि अब तक वो दीवा से मिल नहीं पाई थी।
क्या नव्या दीवा को बात करा पाएगी या नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगले पार्ट में देखते हैं कि दीवा क्या करती है या आर्यांश को इस मामले का पता चलता है या नहीं। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अपने अगले पार्ट पर मिलते हैं।